आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्योति है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कालिंदी कॉलेज से कंप्लीट की है पॉलिटिकल साइंस में। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने चैप्टर की। उससे पहले मैं याद दिला दूं कि इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था एग्रीकल्चर, कृषि पे। और कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्षेत्र है ना। हमारी इकोनॉमी जो है वो तीन भागों में डिवाइड हो रखी है। तो उसमें से जो प्राइमरी पोर्शन था कृषि, जिससे हमें रॉ मटेरियल मिलता है, वो हमने पुराने चैप्टर चैप्टर नंबर 4 में कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर पे, द्वितीयक सेक्टर पे, जो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री जो है उसका सबसे मेजर पार्ट जो है वो उद्योग है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो कौन सा है? सेवा, मतलब उसमें जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं वो सारे आ जाते हैं हमारे उसमें, ठीक है, श्रेणी में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है उद्योग। इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें एक कहानी है जिसमें हमसे ये पूछा हुआ है कि हम कागज़ जो है, क्या हम जानते हैं कि जो कागज़ जैसे आप लोग किताबें पढ़ रहे हैं तो वो कैसे कैसे बना है, उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं? क्योंकि हाँ, हम ये तो जानते हैं कि कागज़ जो है वो हमें लकड़ियों से मिलता है, पर वो किस तरीके से, लकड़ी जो है वो लकड़ी ब्राउन होती है और एकदम रॉ होती है, उसको किस तरीके से बदल करके कागज़ बनाया जाता है, वो जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं कि वो औद्योगिकरण हो रहा है। किसका? लकड़ी का। किस और वो फिर आउटपुट बन के क्या निकल रहा है? कागज़। इस जगह पे जो है उद्योग का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है। मतलब सबसे पहले जो लकड़ी है कि उसकी लुगदी बनाई जाती है और उसके बाद उसको फैक्ट्री भेजा जाता है, उसको फिर कागज़ बनाने के बैटर बनाते हैं और उसके बाद उससे कागज़ बनता है। उसके बाद उसमें छपाई होती है और जिल्द लगने के बाद वो हमारे तक पहुँच पाता है। तो देखा, किताब जो है वो कितनी ही मेहनत से बनता है और तब हमारे पास पढ़ने के लिए आता है। इसको एक तरीके से विनिर्माण भी कह सकते हैं, या द्वितीयक क्रियाकलाप के ज़रिए जो है किताबें हैं हमारे तक पहुंचती हैं। अब उद्योग की बात करें तो यहाँ पे ब्लू से उद्योग लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि उद्योग का संबंध जो है वो आर्थिक गतिविधि से है। आर्थिक गतिविधि मतलब वैल्यू इंक्रीज करने से, किसी चीज़ की भी वैल्यू इंक्रीज करना, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कमोडिटी है, कमोडिटी वो चीज़ जो खरीदी और बेची जाती है, जो उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण मतलब कि जितना उसमें खनिज एनर्जी लगाई जा रही है, और सेवाओं की व्यवस्था और उसमें कितना मैन पावर, कितनी सर्विस दी जा रही है उसे, की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात, लोहा मतलब आयरन जो होता है, इस्पात यानी कि जो खनिज होता है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकलने से संबंधित है। मतलब इसमें एक ब्रॉडर हमें एक साइन दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो द्वितीयक सेवा से रिलेटेड है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो है उससे रिलेटेड है, और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। अगर बात करें हम लोह इस्पात की, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि लोह इस्पात एक तो खुद ही कच्चे माल के रूप में हमें मिलता है, इसको चेंज करना भी औद्योगीकरण है। लेकिन सारे बड़े उद्योगों में लौह इस्पात जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें जो है मशीनों का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो मशीनें किसकी बनी होती है? जाहिर सी बात है लौह इस्पात की ही बनी होती है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? वो औद्योगीकरण के थ्रू हो रहा है, और औद्योगीकरण के लिए ही हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रा गौर से समझिए। उद्योगों का वर्गीकरण, अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस पैमाने पर किया गया है। सबसे पहला है कच्चा माल, कच्चा माल के तौर पे, फिर आकार, स्वामित्व के आधार पर, मतलब तीन है पॉइंट में। सबसे पहला कच्चा माल, दूसरा आकार, तीसरा स्वामित्व। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित होती है। मतलब कि कच्चा माल जैसा होगा उससे हम उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ खनिज से आधारित है तो हम उससे कुछ मेटलिक चीज़ बना पाएंगे। अब उससे हम कुछ खाने की चीज़ तो नहीं बना सकते ना खनिज से, उससे कुछ ऐसी ही चीज़ बना सकते हैं जैसे मशीन्स वगैरह या कुछ भी ऐसा। और अगर हमारे पास कुछ ऐसी वस्तु है जो जैसे धान हो गया, जैसे और भी कुछ फल हो गए, तो उससे हम कुछ खाने का बना सकते हैं, उससे हम मशीनें नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंस होता है कच्चा माल में, कच्चा माल जैसा होगा उससे उसी का बेहतर आउटपुट जो है वो मिलेगा। कृषि आधारित उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग मतलब कि उससे आधारित कच्चा माल जो कृषि से आधारित है वो कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। संसाधन वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डेयरी आ गया या उसके साथ वनस्पति तेल, चर्म उद्योग, कृषि आधारित, ये जितने भी हैं वो सारे रिलेटेड हैं किससे? कृषि आधारित उद्योग से। खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो ये प्राथमिक उद्योग तो है ही, और इसमें लौह अयस्क या खनिज अयस्क जो है वो यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जिसके नाम ही से पता चल रहा है कि खनिज यानी कि लौह इस्पात, ये जितनी भी चीज़ें हैं कच्चे माल के रूप में या भारी मशीनें और भवन निर्माण के लिए जो है इन सब सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समुद्र आधारित उद्योग की, तो समुद्र आधारित उद्योग में वो सारे उद्योग आ जाते हैं जितने भी ओशन डी, जैसे मछली पालन, मत्स्य पालन जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो जितनी भी और सारी चीज़ें जिसमें हमने बात कर ली मोतियों की, है ना, इन रिफाइनरीज़ की, ऑयल रिफाइनरीज़ की, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे समुद्र से रिलेटेड आ जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वन आधारित उद्योगों की, तो वन से हमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ब्रॉड लेवल में जितना भी रॉ मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा हमें वनों से ही मिलता है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी सबसे ज़्यादा वनों का ही होता है। इससे हमें रसायन, औषध, कागज़, जितनी भी आप चीज़ें अपने आसपास एक बार नज़र फेरें और देखती हैं, जैसे आपको पढ़ने वाला डेस्क, किताबें, उसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें, आपके खेल का मैदान जो है उसमें जो सफाई की गई, वो भी पेड़ों को काट कर ही की गई है, तो ये आपकी पेंसिल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी हमें वनों से मिलती हैं। आकार, अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमने बात करी कच्चा माल की जिसके सारे पार्ट्स थे, उसके बाद हम बात करते हैं आकार की, कि आकार मतलब आकार क्या, उद्योग में आकार का क्या लेना देना है? तो उद्योग में आकार का कुछ लेना देना नहीं है, उद्योग ही दो आकार के होते हैं, सबसे पहला होता है लघु आकार और दूसरा होता है वृहद आकार। लघु आकार उद्योग वो होते हैं जो छोटे लेवल पे इस्टेब्लिश होता है, वो किसी भारी भरकम मशीनों या बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं होता, वो लघु कुटीर उद्योग होते हैं जो कि छोटे पैमाने पर कम एम्प्लॉयज़ के ज़रिए बनाए जाते हैं, जबकि जो कह सकते हैं वृहद आकार के होते हैं उद्योग, उनमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा मशीनें जो है वो इस्टेब्लिश कर दी जाती हैं। लघु कुटीर उद्योग में बहुत कह सकते हैं ज़्यादा यूज़ जो है वो मैन पावर्स का होता है, और जबकि जो वृहद उद्योग है उसमें ज़्यादा यूज़ जो है वो मशीन्स का होता है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही जो भी उद्योग हैं उन दोनों के अपने खुद के कह सकते हैं प्रॉफिट और लॉस है, प्रोज और कॉन्स दोनों ही हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, टोकरी जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन या हस्तनिर्मित वस्तुएं जो हाथ से बनाई जाती हैं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना हो गया, चाहे मशीन्स बनाना हो गया, टॉयज़ बनाना हो गया, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं तो बड़े पैमाने पर होती हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। मतलब कि अगर कोई उद्योग या कह सकते हैं कोई जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो छोटा है तो उसमें जो कैपिटल लगेगा, कैपिटल में पैसा भी आ सकता है और बहुत पक्की जो चीज़ें होती हैं मशीन्स वगैरह वो भी, तो वो जो है कम लगेगा, जबकि अगर बड़ा उद्योग है तो उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, इनपुट जो है वो उसमें ज़्यादा लगेगा। इसके साथ बात कर लेते हैं कि बड़े उद्योगों में हमने बात तो कर ली कि ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड हो सकती हैं। तो इसमें है ऑटोमोबाइल सेक्टर या भारी मशीनों के उत्पादन हो सकते हैं, इसमें रेशम की बुनाई या खाद्य प्रकरण हो सकते हैं। मतलब कि आप देखेंगे जितनी भी हैवी चीज़ें हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत बेसिक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं बड़े पैमाने पे। जबकि हस्तलिपि जो लोग शौक से ख़रीदते हैं, इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट, मतलब वो लग्जरी प्रोडक्ट्स में आ जाता है। तो उन सारी चीज़ों के अब कुटीर उद्योग रह गए हैं। जबकि पुराने ज़माने का अगर हम गौर करें, आज से आज़ादी से भी पहले की बात, तो पहले के लोग जो है वो हस्तशिल्प को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि उद्योग से जो कहते हैं फिनिश गुड था वो उन्होंने नहीं देखा था। इसीलिए जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत स्टेबल थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों के यहाँ से कह सकते हैं कि सूती उद्योग और मशीनीकरण का जो युग है वो आया, उसके बाद हमने बहुत बड़ा अंतर देखा। क्या देखा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट है उसकी, जिसमें आता है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के निजी क्षेत्र, राज्य स्वायत्त और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत है। इसको क्लासिफाई किया गया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, सार्वजनिक किसी भी वर्ड के आगे अगर लगता है कि ये चीज़ सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक कुछ भी जगह है, तो यानी कि वो जो एरिया है वो पब्लिक एरिया है, मतलब कि वो गवर्नमेंट का एरिया है, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र का उद्योग की। तो इसमें स्वामित्व और संचालन जो है राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा, तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, या फिर स्टेट जो है वो लोगों के साथ मिलके ये चीज़ स्टार्ट कर सकता है, जिसमें मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। मतलब मारुति जो कंपनी है, आपने सुना है ना, मारुति सुजुकी, सुजुकी जो कंपनी है वो जापान की है और जो मारुति है वो इंडिया की है। तो मारुति के साथ, मारुति को कोई एक ओनर नहीं है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिजनेस करते हैं मारुति के नाम पे। उसके बाद बात करते हैं कि सहकारी क्षेत्र उद्योग क्या है। तो सहकारी क्षेत्र उद्योग का मैं सबसे, अगर आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे सकूं, तो वो है अमूल। अमूल जो है वो एक बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, आज़ादी के वक्त का, आज़ादी के वक्त से इवन पहले का। उसके अलावा तब भी अमूल जो है वो एक सहकारी क्षेत्र बन करके आज तक सबसे ज़्यादा जो प्रेस्टीज है वो अमूल की बहुत है। इसके बाद बात करते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों को मेन मेन जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं, वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने, आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे 11th में, तो आप ये कुछ पढ़ेंगे, उसमें टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं कि जब हम कभी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें मेन फोर फैक्टर क्या देखे जाते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे मींस, यानी कि जो भी आपके पास कह सकते हैं कि पैसा है वो, उसके अलावा लैंड, उसके अलावा कैपिटल। लैंड, लैंड मतलब ज़मीन, क्योंकि फैक्ट्री जो है आप एक ज़मीन पे ही तो रखेंगे ना, बनाएंगे। उसके अलावा कैपिटल, कैपिटल मतलब कि आपको फैक्ट्री लगाने के लिए उसमें कुछ रॉ मटेरियल या सब चीज़ें, मशीन्स, कैपिटल अपना खर्च करना होगा वो। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो उस पूरे बिजनेस को जो है वो हैंडल कर सके। तो औद्योगिकरण में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, जैसे कि सबसे पहले भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाज़ार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हों। भूमि, जल तो आपको समझ आता है, लेकिन सड़क और परिवहन और जल क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है मोबिलिटी कह सकते हैं, प्रोडक्ट की मोबिलिटी, आना जाना जो है वो कम खर्चीला पड़ता है। जिससे इसका एक और एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपको कहीं से बहुत सारे घड़े बनाने का ऑर्डर आया और आपने बनाया, लेकिन आपको वहाँ तक वो सामान पहुँचाने में आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको ऑटो या कुछ भी ऐसा वाहन करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि अपने बनाए हुए सामान के साथ साथ आप वो कॉस्ट भी जो है वो सामने वाले को बताएंगे, है ना। इससे क्या होता है, वो जो प्राइस, एक्चुअल प्राइस था उस प्रोडक्ट का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके तरफ से जो है यातायात के साधन बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको जो है महंगा साधन यूज़ करना पड़ा, उससे आपके प्राइस जो है वो बढ़ गए। जबकि अगले क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ पर जो है आपको कोई महंगा साधन इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और आपने कम पैसों में ही वो सामान जो है प्रोडक्ट जो है बेचवा दिया। अब देखिए कि जहाँ पे आपको वाहन महंगे वाहन का सहारा लेना पड़ा वहाँ, और जहाँ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा वहाँ, तो प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन दोनों के प्राइस क्या हो गए? ऊपर नीचे हो गए। तो यही सेम चीज़ होती है, लोग फिर क्या खरीदेंगे? सेम सामान लेकिन ज़्यादा प्राइस पे नहीं खरीदेंगे, वो तो कम प्राइस पे खरीदेंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो है वो नुकसान हो गया। किस वजह से? क्योंकि आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो परिवहन के पास, ये कह सकते हैं संचार के पास नहीं था, दूर था इसलिए। जबकि ये जितने भी कारक हैं, कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्र जो होते हैं जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई होती है वहाँ पर भी उद्योग स्थापित हो सके। क्योंकि उद्योग स्थापित होने का मेन जो रीज़न है वो ये होता है कि जहाँ पर कंपनी या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई वहाँ रोज़गार आएगा, वहाँ मजदूर काम करेंगे, उनकी आय होगी और उनके पास डिमांड बढ़ेगी। जब वो डिमांड बढ़ेगी तो खरीदार बढ़ेंगे, और अगर खरीदार बढ़ते हैं तो उन्हें सप्लाई या कह सकते हैं बेचने वाले दुकानदार बढ़ते हैं, और इस तरीके से वो जो क्षेत्र वीरान पड़ा था वो अपने आप ही चहल पहल उठेगा। इसीलिए जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा इस तरफ ध्यान देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूंजी का इस्तेमाल करके उद्योग स्थापित किए जाए, जिससे विकास का जो परिपथ है वो बहुत ही अच्छा बन सके। इसके बाद बात करते हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, मतलब ये तीन प्रोसीजर्स हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, ये सारी चीज़ें, जल की उपलब्धता, परिवहन, जितने भी फैक्टर्स हैं जिसको जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किए हैं वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो नाम लेते हैं। उसके बाद निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों की अटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छापाई शामिल है। कमीज पहनने से पहले आप इसे उत्पादन देते हैं, मतलब कि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुराना एंशंट और इसे समझने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से जो है सूती वस्त्र है वो इतने अच्छे से, उसे पहले बनाया, काटा, बुना, सब कुछ किया जाता है, उसे बहुत मेहनत की जाती है, तब जाके उसकी कहीं एक कमीज़ जो है वो बन पाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज़ है वो औद्योगिक तंत्र का यूज़ किस लिए करती है, वो जो जो भी आउटपुट या रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए करती है। औद्योगिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो औद्योगिक प्रदेश जो होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ का जो है बहुत मेजर रोल होता है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के पास हों और उसके बाद वो इंटरडिपेंडेंट भी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा जो उद्योग है, मैंने एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की है और मेरा उद्योग है कि मैं पैकिंग, कह सकते हैं जो फ्री फूड्स होते हैं जैसे कि चिप्स वगैरह, उनकी पैकिंग का काम करती हूँ, मेरी इंडस्ट्री ये काम करती है, लेकिन वो जो फूड है वो मेरे साथ वाले जो पार्टनर है वो करते हैं, वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं और मैं उनकी पैकिंग। तो एक तरीके से क्या है, वो बहुत ही इंटरलिंक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो फूड मैन्युफैक्चर करता है वही पैक करता है, लेकिन ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया है कि वो बना रहे हैं फूड को और मेरा है, मेरी फैक्ट्री में जो है वो सारी जितनी प्रोडक्ट है वो पैकिंग होती है। तो एक तरीके से क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है, और वह अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, मतलब कि एक ग्रुप है वो आपस में ऐसे बिजनेस भी करता है और जितना प्रॉफिट होता है वो आपस में जो है वो बांट भी लेते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो है वो अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो मैप समझने की ज़रूरत है। ये मैप जो है हमें बचपन से, कह सकते हैं फोर्थ क्लास से, बहुत डिपिक्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर हमें अब तक दिमाग में घुसा नहीं है तो हमें फिर से देख लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डायरेक्ट की गई हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके अलावा बात करें हम कि जो भी औद्योगिक विपदा है वो क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी है जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते वक्त पे आती है या फिर जो पहले कभी भारत में घट चुकी है जो विपदाएँ उसकी, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी की। ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं औद्योगिकरण के पथ पर सबसे हम सभी के लिए गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से एक लापरवाही की वजह से जो है भोपाल गैस त्रासदी इतना भयंकर रूप ले गई, जिसमें भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को जो है लगभग 00:30 12:30 रात के बजे करीब अब तक की सबसे बड़ी त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना रही, मतलब सबसे ज़्यादा त्रासदी भरी और सच में त्रासदी भरी थी। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथेनॉल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जबकि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो गैस है उसका रिसाव यहीं शुरू हुआ था, जिसमें पूरे के पूरे सरकार की सूचना के अनुसार जो है 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और इसमें हजारों लोग बच गए। लेकिन आज भी उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा इम्पैक्ट कह सकते हैं या उस गैस का जो इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग गैस थी, मतलब आप देखिए कि उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहा होगा सबका इस तरीके की लापरवाही के ऊपर, सच में। इसके बाद हम आगे बढ़े अगर अपने इसी सेम पैराग्राफ में आगे की तरफ, तो 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट हुआ और सेम वही चीज़ फिर चीन में भी हुई। जो पॉइंट्स हैं वो हम ध्यान अगर रखें तो हम इन सारी दुर्घटनाओं को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, तो ये हैं कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए, मतलब कि रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं उनको प्रौद्योगिकी क्षेत्र से दूर रखना ही चाहिए ताकि उनके जितनी भी हानिकारक चीज़ें हैं वो उनके पास जो है मतलब रेजिडेंशियल एरिया पे ना पाएँ। इसके साथ अगर बात करें हम और जो लोग उद्योगों के पास बसे हुए हैं वो किस तरीके के प्रिकॉशंस जो हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं अगर इस तरीके की कभी भी त्रासदी आती है तो उससे कैसे वो बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आग की चेतावनी और अग्निनाशक जो है मतलब कि फायर ब्रिगेड की जो है चेतावनी वाला अलार्म होना चाहिए और उसके साथ साथ सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे हम जो है एक कह सकते हैं फर्स्ट एड के तौर पर हम उस आग को बुझा सकें। जो है वो आग ही सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है। विषैले पदार्थों का भंडारण क्षमता की सीमा होना चाहिए। उसके बाद उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय उन्नति है, मतलब कि सीएनजी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अब उसे यूज़ करो, कार वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस जो है वो यही बना रही है या इसे पास कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि प्रमुख उद्योगों का जो वितरण है वो किस तरीके से हुआ है। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक प्रकार से उभरा हुआ उद्योग, मतलब कि आज की डेट में अगर आप कहें तो सबसे ज़्यादा जो उभर के सामने आया है वो फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन कह सकते हैं प्रेस फील्ड है। ये देश जिसमें लोह इस्पात उद्योग जो है वो इतना अव्यवस्थित है, वहीं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में जो है सबसे ज़्यादा इसे फोकस किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो उसका मुख्य केंद्र जो है वो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बैंगलोर प्रदेश में है, और इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों ही प्रदेश जो हैं वो बहुत फेमस है अपने कम्युनिकेशन के लिए कह सकते हैं, एक तरीके से मुख्य केंद्र के सेंट्रल ओरिजिन बन गए हैं। लोहा इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, मतलब कि बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसका जो प्रोसीजर है पूरा, उसके बाद इसका आउटपुट, ये तीन जो फैक्टर्स हैं वो इसमें भी शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है। पोषक उद्योग कैसे, मतलब इसके ही वजह से जो है और उद्योग जो है वो भी फल फूल पाते हैं। अब ये कैसे भला, क्योंकि जब हम फैक्ट्री में ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिनसे और चीज़ें बन सकें, तो वो एक पोषक उद्योग होते हैं। हम लोहे इस्पात से मशीन्स बनाते हैं, औजार बनाते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं दूसरी चीज़ें बनाने में, तो वो क्या करता है, वो एक बनाए हुई चीज़ों से दूसरे को पोषक प्रदान करता है। जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कोयला, चूना, पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित लौह अयस्क में इस्पात, है ना, निर्माण की प्रक्रिया के चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता, मतलब कि एक तरीके से उसे कहते हैं गर्म इलाके में रखा जाता है ये कच्चे माल को, ताकि वो जो है जल्दी से ख़राब ना हो। लेकिन लौह अयस्क इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, क्योंकि वो लौह इस्पात है, उसमें बहुत सारे कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ भी होंगी और बहुत सारा उसे भी मैन्युफैक्चर भी करना होगा, इसीलिए उसे परिशोधित करते हैं। क्रॉस उत्पादन इस्पात है जो अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है, मतलब उसका जो फिजिकल स्टेट है वो बहुत ही सख्त है और इसे आसानी से काटा या आकार दिया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको पिघलाया जाता है, क्योंकि काटा और मिलाया जा सकता। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्राप्त उत्पाद इस्पात क्या है, या प्राप्त इस्पात जो है वो किस तरीके की रिक्वायरमेंट को, क्या लोहा इस्पात उद्योग की रिक्वायरमेंट को फुल करता है, तो हाँ, इसके बाद बात करते हैं, इस्पात कड़ा तो होता ही है, उसके साथ साथ ही एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, इन सब में भी मिक्स किया जाता है, जैसे अन्य धातु में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो इस्पात मिला दिया जाता है, ताकि मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता, जंग प्रतिरोधक क्षमता, सारी चीज़ें जो है वो मिल सके। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ तक तो बात रही बेसिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, इन धातुओं के निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं कहाँ के लिए, ये पोत, रेल गाड़ियाँ जो है, ट्रक या किसी ऑटो विशाल इस्पात में से, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ भी जो है वो लोहे इस्पात की ही बनी हुई है, जिनका उपयोग आप करते हैं वह भी इस्पात से बनी हुई हैं। तेल को भी इसका भी प्रयोग करते हैं सारी चीज़ें, मतलब धीरे धीरे करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कह सकते हैं एक तरीके से डिपेंड ही है इन इस चीज़ पे। ये जो टॉपिक है ना लोहे इस्पात उद्योग, ये टॉपिक हम फिर से इसे कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे रिलेटेड जो बहुत सारे कह सकते हैं एस्पेक्ट हैं वो अभी भी बाकी हैं, जो कि आज के लेक्चर में कंटिन्यू नहीं हो पाए, तो इसीलिए हम इसे कल फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, इसके प्रोज कॉन्स इम्पॉर्टेंस जानेंगे। बिकॉज आज कह सकते हैं कि हमारी जो सेकेंडरी कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इसी पे डिपेंड है। एज अ यूथ ऑफ द नेशन आपको पता होना चाहिए कि आज की जो हमारे रॉ मटेरियल कह सकते हैं हमारा एग्जैक्ट आज का जो है क्या स्टेट है इस सेक्टर में। ओके, तो इसीलिए तब तक के लिए आप ये पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करिए, कह सकते हैं जितना मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ, और रीड करके रखिए। ओके, और इससे ज़रूरी जितने भी रिलेटेड कह सकते हैं फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़ के रखिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।